कहाँ उतरला है उसको पता नहीं, परंतु रेल के डिब्बे में बैठे हुए अन्य लोगों को कहे आप लोग खुशी से बैठे रहना, झगड़ा मत करने डिब्बा में, और मैं तो अब उतरने जा रहा हूँ। कोई पूछे कहाँ, तो ये पता नहीं है कहाँ उतरूंगा, लेकिन अब उतरने की नौबत है। तो चलती गाड़ी से रेल के चक्का के अंदर जाओगे क्या, पता होना चाहिए ना कि हमारा स्टेशन कौन है, मैं वहां उतरूंगा, इसके बाद हमको कोई लेने आएगा, कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। पहले व्यक्ति पता लगा लेता है तब छोड़ता है घर, लेकिन यहाँ तो छोड़ना है ही और जहां जाना है उसका पता ही नहीं, और जिसको छोड़ रहा है उसी की चिंता कर रहा है, ये दशा। तो तत्व तो जीव इस संसार में अकेला है, लेकिन कितनी चिंता बनी हुई है, हमारा है, ये है, वो है, ये सबके हृदय में बसा हुआ ज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत कोई कथा कहानी मात्र नहीं है, इसमें ज्ञान है, दर्शन है सीखने के लिए। तो वह बकरा अकेले वन में अपना प्रिय विषय खोज रहा था, विचिन्न। प्रिय विषय रूप रस गंध आदि खोजता रहता है। तो अब सुप्रसिद्ध बकरा ले जाओ, तो वह बकरा कौन, यहाँ पर डायरेक्ट अर्थ महाराज अपने पर ले रहे हैं, मैं आगे वो बताएंगे। वो बकरे को प्यास लग गई थी, तो वो प्रियम मतलब जलम, वो जल खोज रहा था। जल खोजते खोजते गया, तब तक देखा कि एक बकरी कुआं में गिरी। कुआं के पास गया तो वहां पर अजाम एक बकरी कुआं में गिरी हुई है। बकरी मतलब देवयानी। तो वह बकरी कुएं में क्यों गिर गई थी, मान लीजिए अगर देवयानी पूछे, अभी देवयानी नाम नहीं रख रहे हैं, मैं यहां पर कह रहा हूं, स्वकर्म बसगा, अपने कर्म फल के कारण वो बकरी गिरी थी कुएं में, अपनी अन्य बकरियों से सखियों से झगड़ा की थी साड़ी के लिए, इसलिए उन लोगों ने इसको पटक दिया था कुएं में। यह अर्थ ऐसा लगता है कि प्रारंभ में ही देवयानी जी समझ गई होंगी, क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री थी और इतना खुल करके कहना कि एक बकरी कुएं में गिरी थी, बस इतना कहते ही वो समझ गई होगी। लेकिन महाराज जजाति की तरह भी वह भी महान विदुषी महिला थी, बहुत महान, इसलिए उसने बहुत अनुकूल भाव से इनकी बातों को ग्रहण किया। वो समझ रहे थे कि अवश्य हम लोगों की हालत जो इस संसार में है वह ठीक नहीं है, हमें सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बैठिए बैठिए। कूपे पतितान स्वकर्म वशगाम अजाम, स्वकर्म वशगाम, अपने कर्म के रस में चलने वाली कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस संसार में अपने पूर्व कर्म के अनुसार चल रहा है या कोई भोग पा रहा है। स्वकर्म वशगाम, यहां पर बहुत विचार पूर्वक इसको अप्लाई कीजिए किसी भी व्यक्ति पर। आज सुख से है कोई आदमी और कल हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, अकस्मात रोग हो जाते, अकस्मात मारपीट हो जाती, व्यक्ति जेल चला जाता है, अस्पताल में चला जाता है, दुख में पड़ जाता है। यही है स्वकर्म बस, कर्म के बस में है, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। अभी घूम रहे हैं वाटिका में, उपवन में, तब तक कुआं में जाना। जीव के कर्मों का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। प्रत्येक जीव इस संसार में अपना कर्म फल भोग रहा है, इसलिए व्यक्ति का धर्म है, उसे चाहिए कि वह भगवान की भक्ति करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, नहीं तो कभी भी कुछ भी विहर घटना हो सकती है, दुख भोगना पड़ सकता है। तो स्वकर्म बसगा अजाम, वह बकरी अपने कर्म फल भोग के कारण कुएं में गिरी हुई थी। तो लोगों के लिए थोड़ा क्लियर करना पड़ता है इसको, ऐसा न समझ लें कि वास्तव में कोई बकरी कुएं में गिरी हुई थी। यहाँ बकरा शब्द से मतलब है पुरुष और बकरी शब्द से अर्थ है स्त्री। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान रूप से इस संसार में सभी दुख भोग रहे हैं, अपने अपने कर्मों के कारण दुख में गिर जाते हैं, गिरे हुए हैं। तो इस प्रकार वह बकरा खोज रहा था, प्रिय विषय खोज रहा था, तब तक एक बकरी को देखा, गुहे में पड़ी। श्रील प्रभुपाद जी इसका और क्लियर अर्थ करते हुए कहते हैं कि विवाह के पहले कोई कन्या बड़े दुख का अनुभव करती है, सोचती रहती है कि कहाँ विवाह होगा, कब होगा, चिंता बनी रहती है, माता पिता को भी बहुत चिंता रहती है। तो बिना विवाह के जो कन्या विवाह के जो हो गई है उसको कुआं में गिरा हुआ कह और कोई उद्धार करे, कोई पानी ग्रहण करे, इसी को उद्धरण कहा जाएगा। जब विवाह हो जाता है किसी कन्या का तो वो सुख का अनुभव करती है, निश्चिंत हो जाती है, माता पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है कि महाराज मनु जब कन्या दान किए अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम जी के लिए तो वे बिल्कुल प्रसन्न हो गए, बहुत भारी चिंता चली गई। पिता के लिए अपनी कन्या का विवाह करना एक बहुत भारी चिंता होती है, जब तक विवाह निश्चित नहीं हो जाता है बहुत चिंता होती है और कई जगह से तिरस्कार होता है। लोग कहते हैं अभी हमारा लड़का पढ़ रहा है तो अभी ये करना है तो वो करना, अभी नहीं करना है। और आज के युग में तो करना निश्चित भी किए तो बस दाम कहते बेचते हैं अपने लड़के को, मेरे लड़के का इतना दाम, दाम मांगेंगे तो कोई आएगा बहुत कंडम आदमी धनी, दाम देगा और दे देगा निकृष्ट लड़की, बस भोगते रहो जीवन कष्ट भोग। ये विचार नहीं होता है और अब तो लोग दहेज लेते, तिलक लेते, और ये क्या कहते हैं इसको पढ़ाने में इतना खर्च लगा है, ये लगा है तो उसको पढ़ाने में खर्च लगा है तो लड़की का बाप सब देगा। सोचिए जरा, पढ़ाई में खर्च हुआ है तो तुम खर्च करोगे ना? नहीं, वो अब लड़के का ससुर पेमेंट करे उसको, वो सारा खर्च दे। बहुत बड़ा शोक का विषय रहता है लड़की के विवाह के पल, ये तो अनुभूत विषय है लोक में। अतः यहाँ जजाति महाराज यदि विवाह के पूर्व में किसी कन्या को ये कह रहे हैं कि कुएं में गिरी हुई थी तो कोई अनुचित बात नहीं कह रहा, ठीक कह। जैसे महाराज जजाति ने उद्धार किया ऐसे कन्याओं का उद्धार करना चाहिए कृपालु पुरुष को, जो लोग चाहते हैं संसार करना, विवाह करना है, उनको इस दया भाव से कन्याओं का उद्धार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं। तो जब उस बकरा ने देखा कि वह बकरी कुएं में गिरी हुई है तो तस्या उद्धरण उपाय वस्तः कामी विचिंतयन व्यधत्त तीर्थ मुद्रित विशालाग्रेण रोधसी। वह कामी बकरा जब देखा कि वह बकरी कुएं में गिरी हुई है तो उसके उद्धार का उपाय करने लगा। उपाय में क्या उपाय किया कि अपने सींग से कुएं का तट खान कर नीचा किया, कुछ दूरी कम हो जाएगी। वो तो धनुष से उस तट को कोड़े थे, धनुष न कह करके तीर्थ करे हैं, ये विशाल तीर्थ का अर्थ तट, विशाल आग्रहण सिंह के नोक से वह बकरा उसको कुएं के तट को खान कर नीचा किया। अथवा वह जो धनुष था वह अभी सिंह का बना हुआ था, इसलिए विशाल आग्रहण का अर्थ धनुराग्रहण, धनुष के अग्र भाग से वह कुएं को खोदा। यहाँ पर एक शब्द कंफ्यूजन में डालता है, कामी शब्द क्यों कह रहे हैं। महाराज जजाति कामी नहीं थे, उन्होंने जो देवयानी का उद्धार किया तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पाणिना गृहत्वा उज्जहार दया पर शब्द, दया करके कृपा करके उसका जीवन बचाने के लिए उन्होंने उसको कुएं से निकाला, न कि काम के बस में। तो फिर अपने को यहाँ कामी क्यों कह रहे हैं, यह कथा सौंदर्य के लिए अथवा अन्य बकरों के लिए, ये समझना चाहिए। महाराज जजाति कामी नहीं थे। आपने सुना था कि देवयानी ने जब विवाह का प्रस्ताव किया तो महाराज ने साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं चाहते थे। काम बसना का प्रश्न कहा, कथा सौंदर्य कथा को सुंदर बनाने के लिए उस बकरा को कामी कहा जा रहा। एक टीकाकार कहते हैं अन्यथा साधारण बकरा के, साधारण का अर्थ जितने भी मनुष्य हैं जीव हैं सब बकरा हैं और प्रायः अपने कामना की पूर्ति के लिए ही विवाह करते हैं, तो इसलिए कामी कहा। तो वह कामी बकरा तट को खोदा, लेकिन जब वह बकरी कुएं से निकली तो उसने उसी बकरे को पसंद किया और उसने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी, और उसके साथ वो बकरा रहने लगा। लेकिन वो बकरा इतना सुंदर था और इतना धनी था, प्रतापी था, राजा था, इसलिए अन्य बकरियां भी उसको पसंद करती थी, शर्मिष्ठा आदि कहने का आशय है। बहुत ही सुंदर कथा कह रहे हैं। वो बकरा कैसा था जो बकरी को निकाला कुएं से, पीवानम समश्रुलम प्रेष्ठम विध्वांसम जाभ कोविदम। पीवानम का अर्थ है वो बड़ा तंदुरुस्त था, स्वस्थ था, मोटा था बकरा, और समश्रुलम का अर्थ है कि उसकी दाढ़ी बहुत अच्छी थी। समश्रु बकरे की दाढ़ी होती है, कथा सौंदर्य के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ है समश्रुलम बकरे की अच्छी दाढ़ी का अर्थ यह है कि वह बिल्कुल युवक था और रति समर्थ था। मिध्वांसम का अर्थ है रेत सेक्तारम का अर्थ है पुत्र उत्पन्न करने में प्रवीण था, अच्छा था बकरा। और याभ कोविदम मतलब मैथुन का ज्ञाता था। इस कारण से कांत कामिनी बहुया आजा, बहुत सी बकरियां उसको पसंद करती थी, उसकी सुंदरता से चाहे उसके धन से प्रभाव से वे सब मुग्ध थे उस पर। टीकाकारगण जैसे श्रीधर स्वामी आदि लिखते गए हैं कि बहुत सी बकरियों में प्रधान थी शर्मिष्ठा और कुएं में गिरी हुई बकरी देवयानी थी और बकरा जजाति महाराज। लेकिन उसके बाद तथाहम कृपण शुभ्रु, जो भी इस कथा को सुनता है कहता है वो सब बकरा है। तथा अहम शब्द लेना चाहिए आगे चलकर, यह मत समझिए वास्तव में कि ये विनोद की कथा है या हमको कोई बकरा कहे तो हम बकरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में बोका है भगवान के भजन के बिना। और यह कथा महाराज जजाति अपनी पत्नी से कह रहे हैं, प्रिया से कह रहे हैं। आजकल की कोई स्त्री हो और इस तरह से कथा पति चालू करे तो एक वाक्य बोलते ही बस चप्पल उठा लेगी और बस बंद करो ये कथा, हमारी आलोचना कर रहे हो ये कर रहे। लेकिन देवयानी बहुत ही गुणवती महिला थी, बहुत प्रेम से श्रद्धा से सुन रहे थे क्योंकि जीवन का रहस्य बताया जा रहा था, कहां हम फंसे हैं, कहां बंधन है, क्या दुख है, इसको बताया जा रहा था, कैसे मुक्त होंगे, कैसे भगवान को पाएंगे। परंतु यह कथा एक पति पत्नी के माध्यम से दी जा रही है भागवत में, इसलिए कि लोग सुन सके। अगर इसी बात को कोई उपदेशक गुरु आकर कहने लगे किसी को कि तुम बकरा हो और बकरी हो, दोनों स्त्री पुरुष बैठे हो, तो वो तो सुनेंगे ही नहीं, बस 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 बंद करो, यही इतिहास पढ़कर आए, यही शास्त्र सुना रहे, नहीं सुनेंगे। और बाकी अलग के श्रोता भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए बहुत बुद्धिमानी से इतिहास को दिया जा रहा है, पति ही इस कथा को कह रहा है और श्रोता है पत्नी। तो उस बकरे के गुण का वर्णन किए और बकरी का भी वर्णन करते हैं, सुश्रोणी। सुश्रोणी, श्रोणी का अर्थ होता है कटी प्रदेश, उसकी कमर बहुत सुंदर थी, इसका अर्थ है उपलक्षण। वह बहुत सुंदरी बकरी थी जो कुएं में गिरी थी, जब कुएं से निकली तो उसने उसी बकरे से प्रस्ताव रखा कि मैं आपके साथ पानी ग्रहण करना चाहती हूँ, आप मेरा पति बनिए। तो वो क्या करे, बकरा फेर में पड़ा, जब पहले फेर में नहीं होता, काम ही कर रहे हैं, बकरा भी उसको पसंद कर रहा था, तो उसने स्वीकार किया उस आजा के प्रस्ताव को। परंतु वह बकरा कामी था, इसलिए स एको जब बहवी नाम रतिवर्धन हम। वह बकरा समस्त बकरों का सरदार था, राजा था, उसका नाम था जजाति। ये हम लोगों के लिए यह शब्द है। तो राजा अज वृषम, वृष का अर्थ श्रेष्ठ, अज वृषम बकरा, बकर श्रेष्ठ। वह तो बकरा बहुत सी बकरियों का रतिवर्धन था, बहुत सी बकरियों के साथ वो संग करना चाहता था, उनसे प्रेम करता था। महाराज जजाति केवल शर्मिष्ठा का संग किए हैं और देवयानी का, लेकिन बहुत सी बकरी कह रहे हैं कथा की सुंदरता के लिए। नहीं तो अगर केवल कहते कि एक और बकरी के साथ जो रमने लगा, तो शायद ये भद्दा हो जाता देवयानी की दृष्टि में, कि बिल्कुल अपने पर ही उतार कर कह रहे हैं, हमारे विषय नहीं कह रहे। इसलिए बहुत शब्द लगाया, बहुवचन। बहुत सी बकरियों के साथ वो रमता रहता था और इतना रमा कि रेमे काम ग्रह ग्रस्त आत्मानम नाव बुद्धता, काम रूपी ग्रह ने उसको ग्रस्त कर लिया था। इतना ग्रस्त था, इतना अज्ञानी बन गया था, भोगों में इतना लिप्त था कि आत्मानम न अवबुद्ध्यतः, अपने को नहीं जाना। भगवान को कोई नहीं कथा में कहा जा सकता है, क्योंकि बकरा क्या भगवान को जाने। ये आत्मानम न अवबुद्ध्यतः, उसे अपना भी होश नहीं था, मैं कौन हूँ, क्या कर्तव्य है इधर उधर। आत्मा का अर्थ भगवान है और आत्मा का अर्थ जीव भी है। तो इस संसार में मनुष्य इतना भोगों में आसक्त है, इतना भोगों में आसक्त है कि वो ये नहीं जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, आत्मा हूँ, और ये देह छोड़ करके मुझे जाना है, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है, भोगों में ही लगा रहता है, भोगों के अर्जन में और भोगने में सारा समय चला जाता है। इसको कहते हैं आत्मानम न अवबुद्ध्यतः, अपने को नहीं जान। प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य है अपने को जानना, खुद को जानना, इसको कहते हैं अपने को जानना। तो हम अपने को जानेंगे कैसे, यदि मान लीजिए अपने ही चेहरा को व्यक्ति देखना चाहता है, अपने मुख को देखना चाहता है, परंतु लाख कोशिश करे आंख से देखने का, क्या आंखों को निकाल कर इधर करके देखेगा चेहरा, नहीं देख सकता। आप देखिए मनुष्य की विवशता, कोई दूसरा उसे सहारा चाहिए अपने को देखने के लिए, दर्पण चाहिए या जल चाहिए, घी चाहिए, तरल पदार्थ जिसमें मुख दिखाई देता। जब हम अपने मुख तक को स्वयं नहीं देख सकते हैं, तो अपने स्वरूप को, आत्मा को हम अपने आप कैसे देख सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं ममई वंश जीव लोक के जीव भूता सनातन, मेरा अंश है जीव, मेरे जैसा चिन्मय है, जन्म नहीं है मरण नहीं है, लेकिन अज्ञान बस इस शरीर में फंस चुका है, माया में फंस चुका है। तो दूसरा कोई ज्ञान देने वाला चाहिए। कुछ मूर्ख इस बात का प्रचार करते हैं कि बस ध्यान करो आत्मा से ज्योति निकलेगी, ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो, वो ज्योति क्या निकलेगी? ध्यान पर बैठता है तो खर्राटा लेने लगता है, यही तो ज्योति है। बहुत से लोगों को देखा गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान करो, यह सरासर मूढ़ता है। वास्तव में तो ध्यान क्या, तो कह दो कि समाधि लगाओ सो जाओ, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। और ये भी कुछ लोग कहते हैं हमारा भजन सांस से चलता रहता है, खूब पता है कि सांस से चलता रहता है। आलसी कहेंगे, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। जब भगवान का नाम लेना होता है तो सांस से भजन चलने लगता है, और जब भोजन करना होता है तब क्यों नहीं सांस से ही खा लेते, या मन से खा ले। वहां तो प्रकट थाली चाहिए, तरकारी चाहिए, भात दाल और क्या क्या नाना प्रकार की चीज है, और उसमें भी कहते हैं पूरा नहीं है और चीज चाहिए। और भजन में बस सांस से चल रहा है, ध्यान चल रहा है। असली भजन है भगवान का नाम जिह्वा से बोलना और कान से सुनना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज एक चर्चा चल रही थी कोई सर आत्मघाती व्यक्ति की, तो जो लोग आत्मा का नाश चाहते हैं, जिनकी ये इच्छा होती है कि हम भी भगवान में मिल जाएं, वो भी आत्मघाती ही, क्योंकि आत्मा का नाश करना चाहते हैं। और बहुत प्रचार करते हैं खुद ही को मिटाओ। पहले ऐसा पागल कौन होगा जो अपने को मिटाना चाहेगा? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी अपने को नहीं मिटाना चाहता है, वो एक परिस्थिति से मुक्त होकर दूसरे परिस्थिति में जीना चाहता है, वो सुख के लिए मर जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि खुदा में मैं ही समा जाऊं, ये साहस देखिए, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अज्ञान का तो पता लग गया कि खुद ही को मिटाना चाहता है, स्वयं को मिटाना चाहता है। जब स्वयं का पता नहीं लगता है कि मैं कौन हूं, तब कहता तब मुआ तो खुद को, खुद की आत्महत्या कर। अरे अपने को जानना है ना, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा में जाएं, उनके धाम में जाएं, उनका भजन करके भक्ति करके उनकी सेवा करें, ये है आत्मा का ज्ञान। गीता का अंत करते हैं भगवान कहते हैं देखो आत्मा का ज्ञान ये है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कृ मामे वयसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽस्मि। मुझमें मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, भगवत गीता का सार ये यही है आत्मा का ज्ञान। लेकिन मनुष्य इतना विभोर है संसार के लोगों में, अपने को नहीं जानता है, अपने कर्तव्य को नहीं जानता, और अपने परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता। कभी कभी तो लोग कृष्ण के विषय में कह देते हैं वो आपके इष्ट देव है, लेकिन हमारे तो दूसरे। पूछा जाए आपके इष्ट देव कैसे हैं, तो उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे भाई कुछ तो बताओ कैसे है, तो वो निराकार, बस सारा उत्तर हो गया निराकार, न हाथ है न पैर है न नाक है न सिर है न कुछ है, और तो भूत तो है। गोपीजन उद्धव जी से कहते, उद्धव जी कहे कि निराकार का ध्यान करो, तो कहते हैं भूत समान बतावत ताक। उद्धव जी मथुरा से कोई भूत लेकर आए हैं जिसका हम भजन करें, तब हम माने बात तिहारी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी तब हम आपकी बात मानेंगी कि अपनो ब्रह्म दिखावो हूं उद्धव मुकुट पीताम्बर धार, अपने ब्रह्म को आप मोर मुकुट पहना करके लाइए और पीताम्बर पहना करके बांसुरी धारण करा करके, तब हम उसको मान लेंगे। नील कहते हैं कि निराकार है तो कैसे पीताम्बर पहनेगा, कहाँ मुकुट लगाएगा, बांसुरी कैसे बजाएगा। अब पागल होकर मथुरा से आए हैं क्या, रहते हैं कृष्ण के साथ और दलाली कर रहे हैं निराकार ब्रह्म की, बदनाम कर रहे हैं अपने को। तो वाइस कही अपने को भी कि मैं निराकार का भक्त हो गया। उद्धव जी को इस तरह से डांटते हैं, खिल्ली उड़ा। आत्मा को जानना है, भगवान को जानने का मतलब है बांसुरी बजाते हुए, मोर पंख पहने हुए, गोचारण करते हुए, रास विहार करते हुए श्री कृष्ण को जानना और उनके नित्य दास के रूप में अपने को जानना और उस दासता को पुष्ट करने वाले कर्मों में रहना, ये है आत्मा का ज्ञान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ लीजिए जो व्यक्ति भगवान का नाम जपना चालू किया, बोलना चालू किया, वो अब इस रोग से अज्ञान से मुक्त हो गया। महाराज जजाति कहते हैं कि वह बकरा इतना रमण कर रहा था कामों को भोग में कि अपने को नहीं जानता था, काम एक ग्रह की तरह, संसार में वासना जो है ग्रह की तरह। ग्रह का अर्थ जैसे वो ग्रह लगते हैं, भूत लगता है, किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है, ग्रह लग जाता है, तो उसको ध्यान नहीं रहता है कि मैं किस घर का हूँ, कहाँ हूँ, कपड़ा पहना हूँ कि नहीं पहना हूँ, वो बकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो जो व्यक्ति काम से ग्रस्त हो जाता है तो काम भी एक बहुत बड़ा ग्रह है, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता है। एक नीतिकार कहते हैं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है और कौवा को रात में नहीं दिखाई देता है, लेकिन कामांध व्यक्ति को तो न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। दिवा नक्तम न पश्यति अपूर्व कोपि कामांध दिवा नक्तम न पश्यति। कामांध व्यक्ति को ये नहीं दिखाई पड़ता है दिन है कि क्या है, रात है, कौन है, लज्जा नहीं होती, बेहाया हो जाता है। बेहया इस तरह से, और अपना ज्ञान ही नहीं रहता। महाराज जजाति कहते हैं उस बकरे को अपना ज्ञान नहीं था, अर्थात मैं भूला हुआ था ये भाव का। तमेव रक्तम अजया रममानम अजान्यया विलोक कूप संविघ्न नामृष्यद वस्त कर्म तत्। लेकिन इस तरह से वो बकरा जब बहुत बकरियों के साथ रमण करने लगा तो जो उसकी सबसे प्रेष्ठ बकरी थी, जिसको वो कुएं से निकाला था, वो बकरी उसके रमण को नहीं सह सकी। जिस बकरी को कुएं से निकाला था वो उसकी प्रेष्ठतमा थी। यह भी कथा कहने की एक कला है, प्रकारांतर से यह कह दिए कि तुम मेरी सबसे प्रिया हो। तो जिस बकरी को वो बकरा कुएं से निकाला था उसने देखा कि अन्य बकरियों के साथ उसका पति रमण कर रहा है, यह देख करके उसके कर्म को सहन नहीं कर सके। कूप संविघ्ना का अर्थ यह है कि कुएं में जो गिरी थी मरने के भय से भयभीत थी और निकाली गई थी, लेकिन निकलने के बाद उस बकरे पर अपना अधिकार मांगने लगी, पत्नी हो गई, और उसका पति जब उससे भिन्न बकरियों से प्रेम किया तो उसके इस कर्म को न अमृत सहन नहीं कर सका, बहुत क्रोध में हो गई। क्यों क्रोध में हो गई और क्या सोचने लगी, तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौ हृदम। जो जो उद्गार व्यक्त किया था देवयानी ने महाराज को बोलते समय, वो सब उनको याद है और वो कह रहा है। जब अपने पति को छोड़कर देवयानी भागी थी अपने पिता के पास तो उस समय क्या क्या कहा था उसके अनुसार ही बोल रहे हैं। उस बकरी ने देखा कि वह बकरा दुर्हृद है, दुर्हृद का अर्थ है दूषित हृदय वाला, ऊपर से केवल मधुर बोलता है, कपट करता है, कपट से झुकते है। तो बोली थी महाराज जजाति वो कपटी कहीं के, ऊपर से कहते हो कि तुम ही केवल मेरी प्यारी हो और उधर शर्मिष्ठा के साथ भी तुम रहे, उससे भी प्रेम करते हो, तुम्हारा क्या विश्वास। तो इसको दुर्हृद कर, सुहृद के ठीक उल्टा। तो वो बकरा दुर्हृद था, कपट कर रहा है। वास्तव में इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सच्चे दिल से पूर्ण रूप से स्त्री से प्रेम करते हैं या नहीं कहा जा सकता, कपट चलता है। सामने खूब बात बना बना कर कहते हैं लेकिन प्रेम पूर्ण रूप से है नहीं, जितना कहते हैं उतना प्रेम नहीं है, इसलिए उनको दुर्हृद कहा। और सुहृद रूपम का अर्थ है केवल सुहृद का रूप भर बना, तो ऊपर से बहुत अच्छा बोलते हैं, स्वभाव दिखाते हैं थोड़े देर के लिए कि वे स्त्री का बहुत मान कर रहे हैं, लेकिन सुहृद रूपम कामी न। असली बात तो यह है कि वो बकरा कामी था, इंद्रिय के भोग के लिए लोलुप था, उस बकरी से उसका कोई प्रेम नहीं था, वो कामी था। और क्षण सब हृदय बहुत थोड़े काल के लिए उसका कुछ कपट का प्रेम भी थोड़े देर के लिए रहता, थोड़े देर के लिए उस बकरी को कभी कभी कहता था मेरी रानी, थोड़े देर के लिए, और बस स्वार्थ पूरा हो गया, इसके बाद कोई सौहार्द नहीं, इस तरह से बोलता था, करता था बकरा। क्षण सब एकदम, क्षण का यहां सौहार्द का अर्थ है कि जब तक अपना स्वार्थ नहीं पूरा हुआ है तो अपने स्वार्थ के लिए थोड़े काल के लिए अपना सौहार्द दिखाता था। यही है बकरों की दशा इस संसार में। अरे कोई क्या प्रेम करेगा, भगवान ही वास्तविक प्रेमी है, सुहृदम सर्वभूताना। ये आशा नहीं रखने चाहिए किसी पत्नी को या पति को भी कि पत्नी हमसे बहुत प्रेम करेगी या पति हमसे बहुत प्रेम करेगा, यह भावना करना ही बहुत भारी धोखा है, अज्ञान है। यही भावना करनी है तो भगवान कृष्ण के प्रति करना चाहिए कि वो हमारे सुहृद है, वही असली पति है, वही असली बंधु है, सखा है, मित्र है, सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान सब कुछ है, लेकिन देखते ही संसार में कितना गाढ़ संबंध स्त्री पुरुष में हो जाता है। वो समझती है कि हमको सुख देगा, हमारा बंधु है, और कुछ ही काल के बाद जब बुढ़ापा आती है तो स्वयं वो पति ही अपनी पत्नी को बुढ़िया कहने लगता है और वो कहने लगते है उसको बुढ़ावा। ऐसा देखा गया है ना, क्या स्नेह है, एक शब्द भी बढ़िया से नहीं बोल सकते, शब्द भी अच्छा नहीं दे सकते, ये कहने चालू करता है, सेंट परसेंट कहने चालू करते। ऐसे कहते समाचार पूछे, क्या समाचार है आपके पत्नी का, तो वो बूढ़ी बीमार है, और वही पति बोल रहा है और पत्नी भी ऐसा कहने लगती। यह संसार के संबंध का पर्दाफाश कर रहा है सब, और कुछ काल के बाद अब पति पत्नी में भी बंटवारा हो जाता है। तो माता जी किसी और पुत्र के साथ रह रहे हैं तो पिताजी और पुत्र के साथ रह रहे हैं, और पुत्र क्या कहता है, हमारे बाबूजी हमारे में खा लो, लगता है कि बहुत भारी उपकार कर रहा है, खिला दे रहा है तो अब बहुत बड़ा एहसान जता है। वो तो हम में ही खाते हैं, अरे वो तुम में खा रहे हैं, तुम उनका खा रहे हो। अगर देखा जाए सारी संपत्ति कमाई वगैरह तो पुत्र खा रहा है पिता का, पिताजी उसमें नहीं खा रहे, ये संबंध है। क्षण सब हृदम, यह कोई एक शर्मिष्ठा, एक देवयानी और महाराज जजाति के विषय में बात नहीं कही जा रही है। महाराज जजाति इस संसार का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। क्षण भर के लिए सौहार्द दिखाया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए सौहार्द दिखाया जाता है। कौन है ऐसा पति जो पत्नी की इच्छा को पूरी कर दे? उसके भीतर अनेक इच्छाएं होती है, उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं भगवान, वही असली पति है। रुक्मिणी देवी ने इस बात को बहुत क्लियर कहा है भगवान कृष्ण से, लेकिन पत्नी को आशा लगी रहती है हमारा पति है, हमारा सौभाग्य है, हमारा हमको यह देगा, हमको यह करेगा। अरे स्वयं ही वो इंद्रिया रामम, इंद्रिय भोग के लिए लोलुप है, उसको स्वयं ही सुख चाहिए, वो क्या सुख देगा किसी को? इंद्रिय रामम का इंद्रियों का पर बस, इंद्रियों की मांग के फेर में पड़ा वह बकरा था। आसीत शब्द भी नहीं लगाए हैं महाराज जजाति, इसीलिए यह अर्थ और क्लियर बैठता है। यह नहीं कहे कि एक बकरा था, खोजते हुए उसने एक बकरी को देखा, ये कह रहे, लेकिन वह बकरा है और रहेगा बहुत काल तक, ये कहने का मतलब। कोई दूसरा बकरा नहीं है, कथा श्रोता में से या वक्ता में से प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि मुझ पर कथा हो रही है, यही असली कथा सुनना है। काहे को महाराज जजाति बकरा होने जाए और देवयानी जी बकरी, हम बकरा हैं, बकरी वास्तव वे तो भगवान के परम भक्त थे, महान थे और धन्य थे। अंत में भगवान कृष्ण का पार्षद बनकर उनके धाम में गए, कथा आएगी दूसरे सिटी में। तो क्षण सौहृदम, यह संसार का रहस्य, कोई किसी से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता, जो कुछ भी है सब क्षण भर के लिए, थोड़े काल के लिए। क्षण का अर्थ है अल्पकालीन। इंद्रियाराम, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति में है, तो ऐसे दुर्हृद सुहृद रूप कामी क्षण सौहृद क्षण सुहृद इंद्रियाराम को छोड़ करके वो बकरी भाग गई। कहाँ भाग गई? अपने स्वामी के पास भाग गई। स्वामी का अर्थ ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्वामी का अर्थ हुआ पति, अपने पति के पास भाग गई, अरे अपने पिता के पास चली गई, ये अर्थ है। बचपन में जो उसका पालन किया था तो वो भी मालिक है ही उसका। कन्यादान के बाद पिता का स्व को हट जाता है, लेकिन कन्यादान से पहले तो पिता की ही होती है, तो पिता स्वामी बने। तो पहले उस बकरी का जहां पालन हुआ था, कहने का अर्थ है कि वो बकरी अपने नैहर भाग गई। यही तो संसार की दशा है। पत्नी के बारे में कहा जाता है हाँ बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन पति से थोड़ी गलती हो गई तो बस चलो रूठ करके भाग जाओ। अभी अभी चिंता नहीं होती कि इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कोई चिंता नहीं, क्रोध में बस चलो 10 दिन आराम करेंगे, भाई भतीजा के यहाँ या पिताजी के यहाँ बस आराम करूंगी, इस तरह से चल देते। तो क्या ये प्रेम है? तो कोई प्रेम नहीं हुआ, न पत्नी का सच्चा प्रेम पति में है, न पति का सच्चा प्रेम पत्नी में। पर माया ने ऐसा बांधा है, ऐसा अज्ञानी बनाया है कि मर जाएंगे जीवन भर लेकिन सत्य को नहीं जान पाएंगे, धोखा के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो चली गई, क्यों चली गई? तो दुखी था वो, दुखित थी, दुखित थी। अब दुखिता शब्द यह रहस्य उद्घाटन कर रहा है, वह बेचारा बकरा इतना मानता था उसको, एक तो कुआं से निकाला था और प्राण दान दिया था, उसके ऊपर सबसे ज्यादा उसी को मानता था, फिर भी वो सुखिता नहीं हुई, फिर भी सुखी नहीं हुई। उसके मन में यही बसा कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कई पत्नियां ऐसी देखी जाती है, पति को सीधे गाली देती है और कहती है ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक बार तो एक पत्नी अपने पति को कह रही थी सब धन स्कान को दे दिया, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। बॉम्बे की बात है, एक पत्नी सामने बोल रही थी, रूम में भेंट करने के लिए आए थे। और बहुत थोड़ा सा बेचारा दिया था, लेकिन सब दे दिया, लुटा दिया। और दो तीन वैष्णवों को खिलाने के लिए बुला दिया तो कहती है, ये सब अपने बाप को बुला करके खिला दिया, खत्म करो। और महाराज जजाति भी थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं देवयानी पर, स्वामिनम शब्द कह करके। वो बकरी, उस बकरे से रंज हुई तो अपने भतार के पास चली गई। वो गाली देने में ऐसा पति गाली दे सकता है? एक टीकाकार इस बात को कहते स्वर्णिम का पति व्यंग जैसा कर रहे, इतना सेवा किया, इतना मान किया, कुआं से निकाला, सब किया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो भाग कर चली गई, यही संसार का रहस्य। कार्य का आशय यह है कि संसार में न तो पति की सेवा से पत्नी संतुष्ट होती है, न पत्नी की सेवा से पति संतुष्ट होता है। पति की ये हालत है कि वो एक बकरी से संतुष्ट नहीं है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं क्षणो नास्ति, सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वो एक पति के साथ एक पत्नी में रहता है। लेकिन उसको यदि अवसर मिले अन्य स्त्रियों के संग की, तो वह नियम नहीं देखेगा, धर्म नहीं देखेगा, और धोखा देगा ही अपनी पत्नी को और दूसरे में आसक्त हो जाए। इतनी पाबंदी थी, इतना बड़ा व्यक्ति, ससुर विद्वान, चेतावनी दिया था कि ऐसा नहीं करना है, शर्मिष्ठा का संग नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो माना नहीं पकड़ा ऐसा किया। तो दोनों तरह से देखिए संसार का रहस्य बताया जा रहा है। कोई किसी का नहीं है, एक तो संबंध ही नहीं है, और जो बीच में दिख रहा है कि बहुत प्यार, बहुत स्नेह, वो सब कुछ नहीं है, धोखा है। अगर है भी थोड़ा तो थोड़े काल के लिए है, बाद में नहीं रहेगा, पहले भी नहीं था। लेकिन भगवान ही एक ऐसे है जो इस जीव यो सहज संघाती, सहज प्रेमी है। भगवान जीवों के सहज प्रिय है, सहज पिता है, वे थे और रहेंगे और इस समय भी वही पालन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु को समझना चाहिए ना, जितना प्रेम अपनी पत्नी से करते हैं उससे सौ गुना प्रेम भगवान से करना चाहिए, और पत्नी जितना प्रेम पति से करती है उसे सौ गुना कृष्ण से करना चाहिए। यह सिखाने के लिए श्रीमद् भागवत मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, भागवत पुराण इस बात की शिक्षा देता है। इसमें कपट धर्म नहीं है, भले थोड़ा कठोर लगे ये वचन, लेकिन वास्तव में बहुत ही सुंदर औषधि है, कटु औषधि। जब वो चली गई अपने पिता के पास, सोपी चानुगत अस्त्रेण कृपणस्तां प्रसादितुं, जब वो भाग गई उस बकरे को छोड़ करके, तो वह बकरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अनुगत स अपि अनुगत, और भी जाने लगा। क्यों? क्योंकि स्त्री, स्त्री के बिना रह ही नहीं सकता था, स्त्री के बस में था, इसलिए चला गया। स्त्री के बस में क्यों था? क्योंकि कृपण था, अजितेंद्रिय था, दीन था, लचार। वो सोचता था कि स्त्री नहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगा, कैसे सुखी होऊंगा। तो दीन था, कृपण, अजितेंद्रिय, इसलिए चला गया। तो उसके पीछे पीछे चला गया क्या करने के लिए? प्रसादित, प्रसन्न करने के लिए, उसको लौटाने के लिए। तो बकरा उसके पीछे पीछे जा रहा था, और क्या करता हुआ यहां तक उसके पैर पर गिर रहा था, उसका पैर दबा रहा था बकरी का, और उसकी स्तुति कर रहा था, बहुत प्रशंसा कर रहा था, अपनी गलती स्वीकार कर रहा था, फिर भी नहीं रुकी, वो चली। पति संधि तुम न असकल, संधि नहीं हो पाई रास्ते में, वो चली गई अपने पिता के पास, तो वो भी पीछे पीछे चला गया। कुर्बन इडबिदा कारम, इडबिदा कारम मतलब बकरे की जाति का जो शब्द है, वो करता हुआ, उसको मनाता हुआ चला गया। इस संसार में सबसे अधिक पत्नी को कहेंगे, नहीं क्या कहेंगे, स्त्री का ही है, सबसे अधिक स्त्री को कोई मनाता है तो बकरा है। बकरा बहुत बकरी को मनाता है थोड़े से सुख के लिए, आगे से पीछे से उसको अपना शब्द करता हुआ, मैं करता हुआ, चाहे जो भी, उसको बहुत मनाता है। इस संसार में जो लोग स्त्री को संतुष्ट करने में बहुत बहुत गिरते हैं पैर पर और बहुत वादा करते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उनको यहाँ पर बकरा का इडविडा कर कहा। कभी कभी तो गा गा करके प्रशंसा करते हैं। सिनेमा में क्या है, कोई पुरुष गा रहा है स्त्री को संतुष्ट करने वाला गीत, उसके सौंदर्य का गीत या उसकी स्तुति कर रहा है, और स्त्री गा रही है पुरुष को संतुष्ट करने के लिए। बस यही तो माया है वास्तव। स्त्री पड़ी हुई है पुरुष को संतुष्ट करने पर और पुरुष पड़ा हुआ है स्त्री को संतुष्ट करने पर, इडविडा कारण। अगर इतनी स्तुति, जितना स्त्री की प्रशंसा करते हैं और उसको सुख सुखी देखना चाहते हैं करते हैं, उतना का दसवां हिस्सा भी भगवान कृष्ण के मंदिर में उनकी स्तुति की जाती तो बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता। स्त्री के पास 10-10 घंटे बैठने की फुर्सत रहती है, लेकिन मंदिर में आने के लिए एक मिनट की फुर्सत। यह है भगवान से संबंध लोगों का। क्यों नहीं महाराज जजाति ऐसे लोगों को बकरा बना रहे, ये सब भोग का, भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके कहने का आशय ये और मना आ रहे हैं स्त्री को, भावना आती है। बकरा कहता है, चाहे बकरी कहता है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी वो ऐसे धर्म भी करता है बकरा, ऐसी बात नहीं है कि टोटल विस्मृत है, लेकिन 99% उसका समय माया में जा रहा, भगवान से कोई संबंध नहीं, विस्मृत दशा है, पागल की दशा है जीव की। बहुत सुंदर फिलॉसफी दी जा रही, दर्शन बताया जा रहा है। तो कुर्बन इडविदा कारण बेचारा बकरा पूरा प्रयास किया, जितनी उसकी वाक शक्ति थी प्रसन्न करने की, वो सब बोलता था। यहां तक वो बकरा बोला रास्ते में, प्रिय जब तुम मेरे देह पर लात से मारती हो, नहीं मानती हो, तो तुम्हारा पदाघात मुझे ऐसा लगता है कि मुझको कोई कमल के पुष्प से स्पर्श कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जब स्त्री को मनाने में वो स्त्री मानती नहीं, मान लीजिए पदाघात कर रही थी, कर दे पदाघात कर दे तो उसको वो कहता है कामी व्यक्ति, तुम जो मुझे मारती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कमल का स्पर्श हो रहा है, और तुम्हारे पैर से मारने से मेरे सारे शरीर में सिहरन हो जाती है, रोमांच हो जाता है, इतना आनंद आता है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत कष्ट होता है कि मेरे शरीर के जब रोएं खड़े रहते हैं तो उस समय मेरा शरीर उभर खाबड़ हो जाता है, और उसे कंटक जैसे रोमांचित शरीर पर तुम अपना कमल के समान सुकुमार पैर रखती हो तो तुम्हारे पैर में पीड़ा हो रही है, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सोचकर यह अभी कहे थे जजाति महाराज, हमारा शरीर इतना कंटकमय हो गया रोमांच, और उस पर तुम मार रही हो, तुमको बड़ा तुम्हारे पैर में पीड़ा हो रही होगी, इसी बात का दुख है, अन्यथा इस तरह से मारती रहो तो मुझे तो रोमांच हो रहा है, बड़ा सुख है। वाह, इसको इडविदा कारम कहते, बकरे की जाति का अनुगमन करना, स्तुति करना। जो इस तरह से स्त्री को मनावे और घंटो, वो वास्तव में बोका है। या किसी भी तरह से, केवल स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण की ही बात नहीं है, और भी उपलक्षण से किसी भी वस्तु में कोई आसक्त है या किसी की चापलूसी कर रहा है तो वो भी बोका ही है। जैसे मान लीजिए किसी नेता की चापलूसी में पड़ा हुआ है, ये हमारा काम करा देगा, ये करेगा वो करेगा, भगवान के मंदिर में नहीं जाते, भगवान पर विश्वास नहीं है कि जो क्षेमम बहा में, कभी भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं किया कि भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इस आदमी की चापलूसी करो, उसकी चापलूसी करो, इसकी करो, इसकी करो, और इसी में जीवन चला जाता है। आजकल बहुत सुंदर शब्द दिया है, चमचा चमचा गिरी। ऐसे भगवान की स्तुति यदि करते, अरे और नहीं, कम से कम एक माला तो जपना चाहिए, तब हम बकरा जाति से मुक्त होंगे, तो इस जोली से तो मुक्त हो जाएंगे। फिर महाराज जाति जैसा विद्वान हमको बकरा नहीं कह पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अबकरा पथी न संधितुम सकलो, नहीं मना पाया। यह भी एक रहस्य, देखिए इतना जिद स्त्री कर लेती है। बेचारा इतना मना रहा था, पैर पर गिर रहा था, लेकिन नहीं मना। तो चली गई अपने पिता के पास, तो बकरा भी मैं भोबो करता हुआ चला गया पीछे से। और तस्या तत्र द्विजह कश्चित अजा स्वामी छिन्न दुरुषा, वहां जब बकरी ने जा करके यह कहा कि ये आपका दामाद बकरा अन्य भी बकरी के साथ रहता है, इतना सुनते ही वो अजा स्वामी उस बकरी को पालने वाला उसका पिता उस बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया। इसका मतलब कि संभोग सामर्थ्य का हरण कर दिया, बूढ़ा बना दिया कहने का। अब वो भी अजा स्वामी था, अजा स्वामी मतलब वो अभी एक अजा का स्वामी था, वो भी एक बकरा ही था, कहने का सही है। इस अजा का स्वामी नहीं, इसका तो पिता था, लेकिन एक और कोई ना कोई बकरी रही होगी जिसका वो पिता था, पति था। तो अजा स्वामी वो क्रोध में आ गया, बड़ा विद्वान बकरा था, लेकिन क्या कहा जाए, उसका विवेक नष्ट हो गया और इस बकरे को वृद्ध बना दिया, तुरंत साप दे दिया, उसकी रति सामर्थ्य हर लिया। जो भी एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसमें संसार को भोगने की शक्ति नहीं रह जाती। मतलब उस बकरे को बधिया कर दिया, कहने का सही है। इस तरह से किया, इसी पर आचार्य टीका करते हैं कि उसको संभोग शक्ति से शून्य कर दिया, न जवान रहेगा न अन्य बकरियों के साथ इसकी तृष्णा रह जाएगी। तो क्रोध में रूसा, क्रोध में आ गया, क्रोध में ऐसा कार्य कर। लेकिन वो बकरा तो कांपने लगा बूढ़ा होकर के, अब जिसका अंडकोश कट गया था तो क्यों नहीं दुखी हो, वो बकरा तो दुखी हो गया और रोने लगा। उस बकरे से विनय किया, उस शुक्राचार्य नामक बकरे से विनय किया, तो वो बड़ा विद्वान था, योगविद उपायज्ञ, वो बकरा बहुत उपाय जानता था। बूढ़ा को जवान बना देना, जवान को बूढ़ा बना देना, तो उसके लिए एक सेकंड का काम था। तो अर्थाय एक प्रयोजन के लिए उसने बकरे का अंडकोश जोड़ दिया, मतलब उसको जवान बना दिया। उपाय बताया कि जाओ तुम अपने पुत्र से कहो, अगर वो स्वीकार कर ले तो तुम्हारी जवानी लौट जाएगी। अर्थाय का प्रयोजन के लिए, प्रयोजन ये था कि उस बकरे ने देखा कि उसकी पुत्री ऐसे ही रह जाएगी और पुत्री का पति बूढ़ा हो गया, तब अपने पुत्री के कामों को भोग के लिए कि यह सुखी हो, इसके लिए उस बकरे को जवान बनाया। यह अभी व्यंग है उन पर, वह अभी जवान बनाकर यह उपदेश नहीं किया कि अब कृष्ण का भजन करो। वो इसलिए जवान बनाया बकरा को क्योंकि उसकी पुत्री का उपति था, अगर उसकी पुत्री का पति नहीं रहा होता तो आज तक वो बकरा बूढ़ा ही रह गया होता, ये कहने का आशय। ये है सुविधा देना, संसार के माता पिता भी ऐसे ही हैं, वो अपने बच्चे को अपनी बच्ची को माला नहीं देते हैं, गीता नहीं देते हैं कि भजन करो, और सारा सुख की सामग्री देंगे, पलंग देंगे, घड़ी देंगे, अब तो टेलीविजन भी देते हैं और रेडियो देते हैं, सब देते हैं, लेकिन एक भागवत खरीद करके नहीं देते हैं कि ले जाओ इसको पढ़ना, तो संसार बंधन से मुक्त हो। तो अजय स्वामी और शुक्राचार्य भी अपनी पुत्री के संसारिक सुख के लिए व्यवस्था कर दिया। वास्तव में शुक्राचार्य जवान बना करके यदि कहे होते महाराज जजाति से कि देखो बेटा अब युवक हो गए, बड़े भाग्य से इस विपत्ति से मुक्त हुए हो, अब भगवान कृष्ण का भजन करो, उन्होंने नहीं कहा, अपनी पुत्री का पर्पस देख करके उनको जवान बनाया, इसलिए अर्थाय शब्द दिया जा रहा। तो यह केवल श्रीपाद शुक्राचार्य की बात नहीं है, लड़की का पिता हो चाहे लड़के का पिता हो, गार्जियन कोई भी, वे वास्तव में कन्या या वर के लिए लड़के लड़की के आध्यात्मिक हित के विषय में कोई विचार नहीं करते, कुछ भी नहीं सोचते, यह कर्तव्य है पिता का कि वो अपनी पुत्री को भगवान कृष्ण से जोड़े, कृष्ण की भक्ति सिखाए, पिता का कर्तव्य है, और माँ का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य है, पर इस कर्तव्य को नहीं करते हैं, सांसारिक सुख की सामग्री जुटा कर देते हैं, देना चाहिए ठीक है वो अभी, लेकिन भजन के लिए प्रेरित करना चाहिए। संबद्ध वृषण सोपी यजया कुपलब्धया कालम बहुतिकम भद्रे कामर नद्याति तुष्यति। तो जब उस बकरे का अंग जुड़ गया अर्थात वह फिर से युवक हो गया, तो कुएं से प्राप्त उस बकरी के साथ बहुत काल तक विषय भोग किया, बहुत काल तक विहार किया, सुख भोग अजया कुपलब्धया, कुपलब्धया कुएं में जो प्राप्त हुई थी उस बकरी के साथ रहा, अब तो उसकी हिम्मत हट गई कि शर्मिष्ठा आदि बकरियों के साथ रहे, ऐसा ये कह रहे। वास्तव में महाराज तो अब धर्म के अनुसार भी शर्मिष्ठा का कोई वे साथ नहीं करेंगे, उसका प्रयोजन पूरा हो गया, तीन पुत्र हो गए थे, इसलिए धर्म का पालन हो चुका। लेकिन महाराज जजाति के कहने का आशय है कि कथा के लिए बाहरी आशय है कि वो बकरा अब इतना डर गया था एक बार अंग भंग होने के कारण, बूढ़ा होने के कारण, कि अब वो केवल कुपलब्धा बकरी के साथ रहता था, देयानी के साथ रहता था। कालम बहुत ही थम, बहुत काल तक भोग भोगा, बहुत काल तक कितना, तो 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक विषय भोग किया, लेकिन काम ही न अद्यापि तुष्य, लेकिन विषय भोग की सप्लाई से भोगते भोगते संसार के रूप रस गंध आदि से अद्यापि न तुष्यति, आज तक संतुष्ट नहीं हुआ, नहीं बना, भोग भोग रहा लेकिन आज तक उसकी यह मति नहीं आई कि वो बहुत हो गया, पर्याप्त हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, नहीं, विषयों की उसकी लालसा ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह है दशा संसार के भोगों की। हम लोग संसार के जो भोग भोग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह केवल इसी शरीर में नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत शरीर मिला है और सर्वदा विषय भोग करते आए हैं, करते आए हैं। यह भी शरीर बदल जाएगा एक दिन, दूसरा शरीर मिलेगा तो फिर उसमें भी खाएंगे, पिएंगे, स्पर्श करेंगे, सुनेंगे, लेकिन फिर भी तृष्णा नवीन की नवीन रह जाएगी। इसके पहले करोड़ों शरीर में भोगते भोगते आए, अब तक तृप्ति नहीं हुई, इससे अच्छा अब तृप्त हो जाऊंगा, अब तृप्त हो जाऊंगा, अब सुख की प्रतीति होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन अद्यापि न तुष्यति, आज तक संतुष्ट नहीं हो रहा। ये दशा है जीव की। तो अन्य पर, अन्य के बहाने से कही गई कथा को फिर अपने पर आरोपित करते हैं, क्लियर अर्थ कर रहे हैं। वैसे देवयानी जी प्रथम वाक्य से ही समझ गए थे और वे समझ रहे थे कि केवल मेरे लिए और इनके लिए ही यह गाथा नहीं है, जीव मात्र की गाथा है, सबकी यही दशा है, इसलिए वे दुखित नहीं हुई। बहुतिथम, यहाँ बहुतिथम का अर्थ है अनादिकाल से, बहुत दिन बीत गए संसार भोगते भोगते, बहुत शरीर बीत गया, परिवार कोटि कोटि बीत गया, समय तिथियां घंटा पल मिनट सेकंड न जाने कितने बीत गए, और क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं, देख रहे हैं, देखते देखते तृप्ति नहीं हुई, खाते खाते सुनते सुनते और के लिए लालसा बढ़ती ही जा रही है, बनी ही हुई है, कामों को भोगों से विषय वस्तुओं से आज तक तृप्त नहीं हुआ। तथा हम कृपण शुभ्रु भवत्या प्रेम जंत्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव माया। हे शुभ्रु, हे सुंदर भाव वाली अर्थात हे परम सुंदरी मेरे प्रिय, जो उस बकरा की दशा है मैं भी ठीक वैसा ही, मैं वही हूँ। तथा अहम, अब यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि उसी की तरह मैं हूँ, तथा अहम वही मैं हूँ, बकरा और कोई नहीं है मैं। हे शुभ्रु, उसी प्रकार से मैं हूँ कृपण, विषय भोग के लिए आतुर हूँ, ललायित हूँ। मैंने मान लिया है कि विषय भोग मुझे मिले तो यही मेरे जीवन का लाभ है, मैं लाचार बना हुआ, बेचारा बना हुआ है इसके लिए, जो कृपण कहते हैं अजितेंद्रिय, मैं भी उसी बकरे की तरह ही अजितेंद्रिय हूं, अर्थात तथा मैं ही वह हूं भवत्या प्रेम जंत्रित, तुम्हारे प्रेम के वश में मैं पड़ गया हूं, तुमने मेरी इतनी सेवा किया है, प्रेम किया है कि वो मुझे जंत्र की तरह फंसा लिया। दो बात यहां पर महाराज जजाति कह रहे हैं, एक तो तुमने सचमुच मुझसे प्रेम किया, मेरी सेवा किया, वह मेरे लिए एक यंत्र की तरह बस में रखा हुआ, मैं फंसा हूं तुम्हारे प्रेम के बस में, और दूसरा है मोहितस्तव माया, तुम्हारी माया से मोहित हो गया, तुम्हारी बोली से, तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे हाव भाव से, उससे मेरी मति भ्रम में हो गई है, मैं इसको बहुत बड़े सुख की सामग्री मान रहा हूं। एक तो तुम्हारी माया से मोहित हूं, माया का अर्थ है आकर्षण, स्त्री का सौंदर्य, उसकी बोली, और यहां प्रेम का अर्थ है सेवा। तो किसी व्यक्ति के लिए स्त्री के द्वारा दो बंधन है, एक तो सेवा करती है, भोजन बनाती है, बच्चों का लालन पालन करती है, पति की पति को सब तरह से सुख देना चाहती है, तो पति उसके स्वभाव से उसके सेवा से बस में हो जाता है, सोचता है कि कैसे इसके ऋण से उऋण हूं, कैसे इसका प्रतिदान करूं, तो यह भी एक बहुत बड़ा बंधन है। इसलिए जजाति महाराज कह रहे जंत्रिता, जैसे यंत्र, जंत्रिता का अर्थ वशीकृता, मैं तुम्हारे बस में हूं, तुमने सेवा करके प्रेम करके मुझे बस में कर लिया है, और ऊपर से तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बोली और तुम्हारा आकर्षण सौंदर्य आदि, उससे मैं मोहित हो गया, मैं यही मान लिया हूं कि तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारा स्पर्श करना, तुम्हारी बोली सुनना, तुम्हारी हंसी देखना, तुम्हारा मुख देखना, यही मेरे जीवन का ध्येय, यही सबसे बड़ा लाभ, यह है माया, यह मोह। तो सेवा ने बस में कर लिया है और सौंदर्य ने मोह लिया, यह अर्थ, और मेरी वही दशा है, मैं उसी बकरे की तरह 1000 वर्ष तक विषय भोग में ही निरंतर रहा हूं, लेकिन तथा हम मैं भी संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, तथा हम न तुष्यामि, उसी तरह मैं भी संतुष्ट नहीं हो रहा, बहुत काल तक विषय भोग किया। अब यहां तथा अहम, अहम शब्द को पूरी कथा के शुरू से लेना चाहिए, जैसे वो बकरा वन में सुख के लिए घूम रहा था ऐसे मैं भी घूम रहा हूं, लेकिन थोड़ा शब्द डायरेक्ट बोलने से कठोर हो जाएगा, इसलिए देवयानी जी को नहीं कह रहे हैं कि उस बकरी के समान तुम भी हो, ये नहीं कह रहे हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब अपने को कहती है कि उस बकरा के समान मैं हूँ, तो देवानी जी ये नहीं समझ गई होंगी कुआं में गिरी हुई दूसरी बकरी थोड़े तो मैं ही हूँ। इस तरह से एक पक्ष से कहने से दोनों पक्ष हो गया। इधर हम लोग देखते हैं खाट बिना जाता है, खटिया बिना जाता है, तो एक तरफ बिनते हैं, दोनों तरफ नहीं, लेकिन दोनों तरफ बिना जाता है, पूरा हो गया। आधा पर पहुंचते पहुंचते उधर से भी आधा आ जाता है। तो इस तरह से बात ऐसी बोलनी चाहिए कि समझने वाला पूरा अर्थ समझ जाए। तो देवयानी जी समझ गए। तब देवयानी जी ने कहा, अच्छा यहाँ भी महाराज जगति कह रहे हैं आत्मानम न अभिजाना में, तुम्हारी सेवा से और तुम्हारे सौंदर्य से मैं ऐसा भ्रम में हूं, मोहित हूं कि अपने को नहीं जान रहा। आत्मानम न अभिजाना में अपने स्वरूप को या आत्मानम परमात्मानम श्री कृष्णम न जाना, मैं नहीं जान रहा हूं, भगवान का आदर मैंने नहीं किया जीवन में। जानने का अर्थ है आदर भी होता है, प्रेम होता है। जैसे भोजपुरी में कहते हैं, कुछ है भोजपुरी के शब्दों से ही अर्थ ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है वो हमको नहीं मानता, हमसे प्रेम नहीं करता है, तो कहते हैं अरे वो हमारा के कुछ जाने ला, ऐसे कहते हैं। हमको कुछ जानता है? जानता क्यों नहीं, जानता है कि आप किस गांव के हैं, क्या है, कैसे है, तो जानने के लिए जानता है, लेकिन यहां जानने का अर्थ है वैल्यू करना, मूल्यांकन करना, कुछ श्रद्धा करना है, नहीं समझता। तो अभी जानामी का अर्थ यह नहीं है कि मैं, मुझे भगवान का ज्ञान नहीं है, मैं भगवान को कुछ नहीं गिना, कुछ नहीं आदर किया। तो यह तो कथा अपने पर आरोपित करके देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कृष्ण को कितना महत्व दे रहे हैं। जितना हम दूसरों को रिझाने में पड़े हुए हैं, दूसरे की सेवा से कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं, ओ मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, सब उनके सेवा के भार से तो दबे हुए हैं, लेकिन भगवान ने जो हमारा उपकार किया है उस पर क्या कभी ध्यान जाता है? क्या हवा पत्नी दे रही है, पानी पत्नी दे रही है, सांस लेने के लिए, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, सूरज का प्रकाश, जब से जन्म लिए हैं खा रहे हैं, धरती से अन्न उत्पन्न हो रहा है, कौन दे रहा है? ये भगवान दे रहे हैं। अगर सेवा ही देखिए, उपकार ही देखिए, तो भगवान का उपकार तो अनंत है, कोटिन मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार। यदि करोड़ों मुख मिले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि करोड़ों मुख मिले और आपके एक उपकार का, हे राम, आपके एक उपकार का वर्णन मैं करना चाहूं तब भी पूरा नहीं कर सकता, और कोटि कोटि आपने उपकार किया, संसार के लोग क्या कर सकते हैं उपकार। और जहां तक सौंदर्य की बात रही, पत्नी में, स्त्री में सौंदर्य होता है, उसमें जीव आकृष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान के सौंदर्य सुधा सिंधु के आगे संसार का सारा सौंदर्य बिंदु के बराबर भी नहीं, इतना आकर्षक है। क्या कभी भगवान की सुंदरता पर हम लुब्ध हुए? ये विचार करना चाहिए, अन्यथा दशम स्कंध से जान लेना कि हाँ भगवान रास लीला किए थे, काली दमन किए थे, ये किए थे, वो किए थे, यही जानना नहीं है। हम जान गए कि हाँ श्री कृष्ण जान गए, ये सबके इष्ट देव हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं। जब तक मन भगवान के सौंदर्य में, उनकी कृपा में, उनकी दयालुता में आकृष्ट नहीं हुआ, तब तक माना जाएगा कि हम कृष्ण को कुछ भी वैल्यू नहीं दिए, उनको कुछ भी नहीं समझे, संसार को सब कुछ समझ गए। यदि हम भगवान को जान जाते, समझ जाते ठीक से, तो क्यों इस विषय के पक्ष में रहते, क्यों हम संसार को महत्व देके और देते और छोटे छोटे भोग के लिए इतना ललायित रहते, गद्दे की तरह हम इतना भार ढोते, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन भगवान के रस का अनुभव नहीं है, भगवान के सौंदर्य का पता ही नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ा पाप है कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको कुछ भी महत्व ना देना, उनको कुछ भी ना समझना, और जो हाड़ मांस के पुतले हैं, दो दिन के क्षणिक संघाती हैं, उनको ही अपना मानना, उनके लिए सब कुछ करना, ये करना वो करना। तो इस कथा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को इसके सिद्धांत को, दर्शन को अपने पर आरोपित करके और अपना सुधार करना चाहिए, देखना चाहिए और आज से भगवान कृष्ण का आदर करना चालू करना चाहिए। अबलो नशानी अबना नशाई हो, मैं कृष्ण को अपने जीवन में सब सबसे अधिक महत्व दूंगा, किसी भी विषय में कुछ देना है तो कृष्ण को दूंगा, बोलना है कृष्ण के विषय में बोलूंगा, सुनना है कृष्ण के विषय में सुनूंगा, देखना है अधिक से अधिक कृष्ण को देखूंगा, भागवत पढ़ूंगा, और जो काम है, क्रिया है, क्रियाएं हैं, वो तो केवल जीने के लिए, काम चलाने के लिए है, जीवन उन्हीं क्रियाओं में बिताने के लिए नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थ जैसे कर्म, तो अभी जानामी का यह अर्थ है कि मैंने श्री कृष्ण को आदर नहीं दिया, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान को आदर नहीं दिया उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, भारी दुख उठाना पड़ेगा, धोखा में है। महाराज जजाति कहते हैं, प्रिय मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारे सौंदर्य के बस में होकर के मैं भगवान कृष्ण को कुछ नहीं समझा, बहुत बड़े दुख की बात है और आज तक मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। एक तो परम सुख से वंचित रहा, भगवान का सुख मिला नहीं, भगवान के श्रवण कीर्तन दर्शन स्मरण का सुख नहीं मिला, और जिसको सुख समझा था उससे सुख मिला ही नहीं। जब आज तक तृप्ति ही नहीं हुई तो इसका मतलब सुख है ही नहीं, जलनजेव की तरह रह गई। अगर सुख होता तो सुख मिलता। तब देवयानी जी कहती हैं इस बात से, तो विनोद में कहती है, उनको तो ज्ञान पूरा हो गया, लेकिन वे कहती हैं, ननु तरि पुनरपि बहवो विषय सेव्यंतम ततो मनसि प्रीते सती कामोपशांत्या मोह निवर्तता इति चतत्रा। दो श्लोकों में देवयानी जी कहती हैं कि यदि अब तक विषय भोग से तृप्ति नहीं हुई है तो और बहुत काल तक विषयों का सेवन कीजिए, ऐसा करने से हो सकता है कि मन प्रसन्न हो जाए, और मन प्रसन्न हो जाएगा तो काम की उपशांति अपने आप हो जाएगी, और तृष्णा की जब उपशांति होगी तो मोह आपका चला जाएगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसलिए उपाय यही है कि और दिन और बहुत सी वस्तुओं को भोगिए, एक तो और काल बढ़ाइए, मान लीजिए व्यंग करें या संसार को शिक्षा देने के लिए प्रश्न किया जाता है, क्योंकि मनुष्यों के मन में यह बात बसी है कि भाई और दिन भोगेंगे, और दिन भोगेंगे, और जवान रह जाएंगे और अब उत्कृष्ट वस्तु भोगेंगे तो हम शायद सुखी हो जाएंगे, यही भ्रम पड़ा हुआ है। तो यही विकल्प उपस्थापित किया गया कि ठीक है, तो और दिन भोगिए और बहुत बहुत वस्तुएं भोगिए, और यदि आप एक स्त्री से संतुष्ट नहीं है तो आप सार्वभौम सम्राट हैं ही, अन्य स्त्रियों को भोगिए, अन्य वस्तुएं भोगिए, हो सकता है कि आपका मन फिर प्रसन्न हो जाए। इस पर महाराज जजाति ने जो उद्गार व्यक्त किया है वह वैदिक इतिहास में सूर्य चंद्रमा की तरह प्रकाश देता रहेगा लोगों को। इतना बड़ा राजर्षि अपने जीवन का अनुभव दे रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है, नहीं प्रिय, जत पृथिव्याम ब्रह्यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। हे प्रिय, इस पूरे ब्रह्मांड में, देवलोक में, नागलोक में, पाताल में, सब जगह पृथ्वी पर जितनी भी भोज्य सामग्रियां हैं वे सब दे दी जाए एक व्यक्ति को, और खाने के लिए ब्रह्मा जी के बराबर आयु दे दिया जाए कि खाओ खाओ, लेकिन फिर भी उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं होगी, उसको लालसा जेव की तेव बनी रह जाएगी। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष जो कुछ भी मिल जाता है सूखा रूखा खा करके और शरीर यात्रा चला लेते हैं, जिह्वा के आस्वादन के फेर में नहीं रहते। चार चीज महाराज कह रहे हैं, ब्रह्यवम हिरण्यम पशव स्त्रीय, इन चारों के भीतर ही सारी सुख की सामग्रियां हैं, भोग हैं। ब्रह्यवम का अर्थ है ब्रह्मी, जैसे इधर भोजपुरी में भी बोलते हैं ब्रिहिन, ब्रिहिनी का अर्थ है अन्न, और अन्न का अर्थ है फल दूध, और जो अन्न शब्द प्रसिद्ध है गेहूं चावल और नाना प्रकार के और भी अन्न, और इनसे बनी हुई मिठाइयां नमकीन, छह प्रकार के रस है भोजन के, षटरस कहते हैं। भोजन बनाने वाले यदि देवता के यहां से मिस्त्री आने और भोजन बना रहे एक से एक आइटम, एक से एक मेनू तैयार करें, मेनू का अंग्रेजी शब्द है, मेनू का अर्थ होता है भोजन में विविध आइटम, खूब बनाया जाए, एक से एक स्वादिष्ट वस्तु डाल करके, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े कलाकार भोजन कला के विशारद जैसे भीमसेन जी भोजन बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, और उनके अधीन हजारों नौकर रहते थे दूसरे लोग, लेकिन वे डायरेक्शन देते थे इसमें ये डालना है ये करना है वो करना है। तो जितने भी भोज्य सामग्रियां हैं वो सब खाए व्यक्ति तब भी उसका मन तृप्त नहीं होगा, और की लालसा बनी ही रहेगी, और की लालसा बनी रहती है, ये नहीं खाया वो नहीं खाया यहाँ का खाया होता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में भरा हुआ है बात, अब नहीं मिलता है तो लाचारी से वासना बहुत दूर नहीं जाती है, लेकिन व्यक्ति सोचता रहता है कि वो चटनी मिलता, वो चटनी मिलती तो अच्छा होता, अचार मिलता तो अच्छा होता, दही मिलता। एक व्यक्ति तो बैठा था खाने पर, एक दिन कहा कि सजाऊ दही है ना, तो किसी ने कहा कि खाटा दही है ही नहीं, सजाऊ दही तुम फेर में पड़े, जो मिला है वो खाओ, लालसा बनी की बनी रहे। हमारे एक मित्र हैं जयराम दास, गोरखपुर में रहते, तो वो जब भी खाने बैठते थे हम लोगों के साथ, जब भी, तो जो चीज नहीं रहती थी उसी की याद करते थे, जो रहती थी उसमें उनको आनंद नहीं मिलता था। अगर मान लीजिए भात मिला है, दाल मिला है, सब्जी है, अचार नहीं है, तो यही कहते थे वो अचार रहता है, अचार रहता है आनंद है, जो चीज नहीं रहता था उसी की याद करते, जो नहीं है उसमें आनंद देखते थे, और जो सामने पड़ा हुआ है उसमें कोई आनंद नहीं हमेशा। तो मैं ये एक बार कहा कि जवची नहीं खे वही में तू सुख देखा था, जवची बा उकर तो तार दृष्टियों में निकलो गति कुछ होंगे, अरे जो पड़ा है वो खाइए, जो नहीं है उसके लिए तरस कर भी क्या करेगा, वो तो केवल दुख दे रहा है, उसका स्मरण केवल दुख देता था कि नहीं है हाय रे, और जो जो है उसको क्यों नहीं कहते हैं आहा मिला हुआ बहुत अच्छा अमृत तृप्त हो जाए। हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, खा रहे थे, एक एक ग्रास पर आहा आहा करते जाते थे, मैं जानता था कि उनका एक स्टाइल है, वो इतना स्वादिष्ट नहीं था प्रसाद की करे, लेकिन अपना स्वभाव आहा आहा एक एक कवर पर, ऐसे ही खाना चाहिए वास्तव में, लगे कि अमृत मिला हुआ है, भोजन मिला खाने को और आय आय करते खा रहे तो क्या फायदा करेगा, तो आनंद से खाना चाहिए ना। तो ये दशा है संसार में। अभी मान लीजिए एक जगह की चटनी मिली खाने के लिए चाहे एक वस्तु की, तो आदमी दूसरी चटनी की याद करेगा, टमाटर की चटनी मिल गई तो सोचेगा ओहो पुदीना की चटनी रहती, तो ये रहती वो रहती, और यदि अमेरिका का कोई सामान मिला है तो सोचेगा वो इटालियन वस्तु रहता है रहती, अब इटालियन चाहिए, देखा कितनी तृष्णा होती है, कुंभ मेला में देखे हैं हम, तो राजा लोग वितरित नहीं हो सकते हैं फिर कंगाल कहां से होंगे, लेकिन कंगालों की कथा कह रहे हैं। मेला में कंबल मिला, दौड़ दौड़ करके लेते थे, कंबल कोई सेठ साहूकार आकर देते थे, तोड़ कर लेते थे। कोई स्वेटर आया देने के लिए, जैकेट देने के लिए, तो वो भी लेते थे। और आश्चर्य की बात है कि उसमें से कुछ लोग लिए हुए यहाँ बिना कंबल के आए कि यहाँ कंबल मिलेगा, ये भी सुना हूं मैं। ये है तृष्णा। ये तो खैर बहुत निम्न स्तर की तृष्णा बता रहा हूं, लेकिन यह अभी उसी तृष्णा की ही जाति की एक चीज दिखाते हैं। कुछ लोग, हमारे पास कुछ नहीं इसलिए दयावान लोग तो पसीज ही जाएंगे। देवी ये दशा, तो यह तृष्णा ऐसी है कि एक दिन पूरा साम्राज्य मिल जाए ब्रह्मांड का, तब भी हाय हाय बना रहेगा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, ये नहीं मिला। तो भोज्य विभाग, रसना का विषय, कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ मिले और करोड़ों वर्ष खाने को मिले और करोड़ों वर्ष स्वस्थ शरीर रहे, कोई बाधक न हो, कुछ भी न हो, खाए पिए व्यक्ति फिर भी हाय हाय बना रहेगा, और मिले, दूसरा मिले, आइटम बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आया खाने के लिए, खड्डी आया था कथा में, तो खा रहे थे तो वहां सब्जी आलू की और गोभी की चलती है प्राय। उनको कहता है ये कहीं सब्जी रोज खाते हैं आप लोग? उसको पता नहीं था कि कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया में जो एक सब्जी भी रोज नहीं खाते, एक ही सब्जी रोज खाते हैं। हम स्वयं ही आश्चर्य में पड़ गए, अरे ऐसी बात क्यों बोल रहे, एक ही सब्जी रोज खा रहे हैं। कहने का मतलब कि आज आलू का बना है तो कल भिंडी का बनना चाहिए, कल परवल का बनना चाहिए, इसका बनना चाहिए, उसका बनना चाहिए, बदलना चाहिए। क्यों, क्या जरूरत है बदलने की, क्या जरूरत है बहुत बहुत खाने की? भाई शरीर चलाना है ना, तो शरीर तो बहुत साधारण शरीर चल जाएगा। बहुत किस्म किस्म की चीज, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये कटिंग पहन लिया तो वो लाओ, ये करो, वो करो, तृष्णा बनी हो, और इसी में आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। पृथ्वीव्या हम शब्द कह रहे हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड का वाचक है। पूरे ब्रह्मांड में जहां भी जाए और खाने के लिए फर्स्ट क्लास के आइटम दिए जाए, लेकिन फिर भी तृष्णा बनी रहेगी। और हिरण्यम, हिरण्यम का अर्थ है सोना, सोना का उपलक्षण है धन। जितना भी धन है पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, अमेरिका में, भारत में, कोने कोने में जो भी धन है, वैभव है, वो एक व्यक्ति को दे दिया जाए और करोड़ों बरस तक उसको रखे भोगे, लेकिन फिर भी कहेगा अभी हमको कम है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बना रहे। धन से किसी को तृप्ति नहीं हुई है, भोजन से किसी को तृप्ति नहीं हुई है। और पशव, पशु का अर्थ है जैसे हाथी, घोड़ा। अगर यहाँ का सबसे अच्छा घोड़ा मिला, हाथी मिला, तो सोचेगा ऐरावत मिलना चाहिए, और श्यामई के कर्ण और वरुण जी के घोड़े चाहिए, उच्च श्रवा घोड़ा चाहिए, ये चाहिए। ये तृष्णा हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में। कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास की कार निकाला है, कार पर चढ़ रहा है, लेकिन तत्काल ही एक दूसरा वैरायटी से बेटर कार निकला है, निकल जाए तो व्यक्ति तुरंत उस कार को बेच करके दूसरे कार को लेना चाहता है। दिखाते हैं कि हमारे पास बिल्कुल नई कार है, पुराना मॉडल नहीं चलेगा, बदल गया। और उस सबसे तेज चलने वाली गाड़ी पर, कार पर बैठते थे, उसको बाद में कहते हैं तो बैलगाड़ी हो गई, ये बैलगाड़ी हो गए, नई कार चाहिए। और कहीं पता लगा कि जर्मनी में इधर उधर इससे बहुत ज्यादा स्पीड वाली दूसरी कार बनी है, तो उसी दिन दुख चालू हुआ, हाय रे मेरी कार तो किसी काम की नहीं। एक दिन वही कार बहुत फर्स्ट क्लास की थी, लेकिन उससे बेटर दूसरे के पास सुने तो कहने लगे हाय मेरे पास कुछ नहीं। जैसे राजा सहस्रबाहु जब जमदग्नि जी के काम धेनु को देखा तो कहने लगा हमारे पास तो कुछ भी नहीं, जबकि संपूर्ण पृथ्वी का राजा था वो, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। और जब बलात् गाय को छीन कर ले गए, तो जितना भी धन है एक व्यक्ति को दिया जाए वो तृप्त नहीं होगा। रावण की नगरी तो सोने की बनी हुई थी, परंतु फिर भी इधर उधर से धन लूट लूट कर लाता था। उसके पास बहुत स्त्रियां थी, फिर भी सीता जी को लाया। यह है तृष्णा मनुष्य पशव। यह पशु शब्द से तात्पर्य सवारी से है, इसलिए मैं कार अर्थ किया हूं, क्योंकि कार में जीप में भी कुछ घोड़े लगे हुए हैं। इतना हॉर्स पावर की जीप है तो उतना हॉर्स लगे हुए, घोड़ा लगे हुए है। कार में घोड़े हैं, जीप में घोड़े हैं। आप पूछिए उस मशीन वाले से कितना हॉर्स पावर का है, तो इसका मतलब उतने घोड़े उसको चालू कर रहे हैं। हमारे देश में तो हम लोग हाथी के बल से तुलना करते हैं, अंग्रेज लोग घोड़ा के बल से करते हैं। हम लोगों में यहां बताया जाता है भीम में 10,000 हाथी का बल था। भारत सदा उत्कृष्ट रहा है, हाथी के आगे घोड़ा क्या है। एलिफेंट पावर से तुलना करनी चाहिए ना, अंग्रेज लोग हॉर्स पावर चालू। तो जितनी भी मशीनें हैं, सबसे श्रेष्ठ गति से चलने वाला विमान, सुंदर सुंदर विमान वो दे दिया जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसमें जलता रहता है। देखा गया है ये बहुत उत्कृष्ट विमान में बैठे हैं, एक्सक्यूटिव क्लास में, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, लेकिन चेहरा उदास है। एक तो भय बना हुआ है कि कहीं किसी पर्वत पर न गिरे, कहीं किसी जल में समुद्र में न गिर जाए, तो भय बना रहता है। और दूसरी बात यह है कि थलचर जीव नभचर बना हुआ है, आकाश में है तो हालत बिगड़ती रहती है। वो आदमी चाहता है कब लैंडिंग करे, कब जमीन पर जाए, अच्छा नहीं लगता है। बैठा है इतने ऊंचे विमान, इतने अच्छे विमान में, लेकिन तृष्णा बनी हुई है अब दूसरे सुख के लिए, दूसरे सुख के लिए, कोई सुख नहीं। अभी अभी घटना है, एक विमान आ रहा था पेरिस से, नहीं न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहा था, लंदन आ रहा था, और उस पर 100 सवार थे, बहुत धनी, $10,000 लगता था एक ट्रिप का उस पर, और फुल विमान था, कंपनी थी कॉन्कॉर्ड, क्या नाम है, कॉन्कॉर्ड ऐसा कुछ कंपनी, उसका विमान। मैं उस समय उधर ही था तो सुना और न्यूज़पेपर में भी देख, 100 आदमी चढ़े थे, अपने को संसार में सबसे धनी समझने वाले लोग, बहुत सुखी, जो $10,000 देखे और न्यूयॉर्क से लंदन का, जहां का नॉर्मल टिकट है दोनों तरफ का मैक्सिमम $400, और लोग उस विमान पर $10,000 दे रहे दिए थे। मैं साधारण क्लास का 400 बना बताया, हो सकता है 500-600 हो एक्सक्यूटिव क्लास के, तो $10,000 देकर तो चलते थे, और रोज विमान आता था जाता था, भिन्न भिन्न लोग चढ़ते थे। एक दिन पता लगा कि जब ही अपनी उड़ान भरा, एक दो किलोमीटर के पास जा करके गिर गया, एक होटल पर गिरा, और 10 आदमी तो विमान वाले थे और 100 आदमी यात्री थे, सभी समाप्त। अब उस समय उनके स्वजन कहते थे कि बल्कि पैदल चले होते तो जीवित रहते। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, उनके परिवार के लोग इस बात की चिंता किए, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बात जो बाद में पैसा मिलता है जमा करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस का कागज ले लेकर के दौड़ते हैं कि मर गया है तो इतना पैसा हमको मिलना चाहिए, इसका पैसा इधर जमा था, ये था, वो था, वो था, और उसका खूब झंझट चला। तो ये तो दशा है, जितने भी पशु हैं, सवारियां हैं, एक व्यक्ति को मिल जाए, भोजन मिले, सब कुछ मिले, या स्त्रियां, स्त्रियां संसार के सब देश की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी स्त्रियां मिले, और करोड़ों वर्ष मनुष्य की जिंदगी हो और युवावस्था बनी रहे, भोगों की सामर्थ्य बनी रहे, और वो भोगता रहे, फिर भी उसको और भोगों की स्पृहा बनी ही रहेगी, सुख नहीं मिलेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। यह संसार में देखा गया उदाहरण, जैसे रावण को कहा, ऐसे रावण तो एक प्रकट उदाहरण है, लेकिन संसार में कोटि कोटि लोग इसके उदाहरण है। वे और सुख के लिए और स्त्रियों के लिए तरसते रहते हैं, कई प्रकार से। ऐसी गांवों में ये सब लोग विचार नहीं करते, इतनी चर्चाएं नहीं होती है, लेकिन शहरों में बड़े बड़े आते देखेंगे कितना विचार होता है। ऐसे प्रकट व्यक्ति अपना नाम न्यूज़पेपर में देता है और कहता है कि मुझे ऐसी स्त्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और उसमें वो लिखते हैं कि अब तक मैं इंग्लिश स्त्री के साथ था, लेकिन मुझे एक अमेरिकन स्त्री चाहिए। ऐसा स्पष्ट निर्लज लिखते हैं और उसके लिए बहुत भारी रकम वो देते हैं, पैसा देते हैं न्यूज़पेपर वालों को, अखबार वालों को, ये निकालो, और अपनी डिग्री, अपना धन, अपना सब कुछ उसमें वर्णन करते हैं, मैं इतना यशस्वी हूँ, इतना धनी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इसके पहले मैं 10 औरतों को छोड़ चुका हूँ और मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि मुझे इटालियन वुमेन चाहिए, इटालियन गर्ल चाहिए, ऐसे कहते हैं खुलम खुला। ये मैं अपनी आंख से पढ़कर, एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ करके देखा, निकालते कोई तृप्ति नहीं, कोई सुख नहीं, पशु की तरह, पशु से भी अधम, पशु भी बेचारे तृप्त हो जाते हैं, उनकी कभी तृप्ति नहीं। तो जीवन भर केवल यही, ये सुख मिले, ये सुख मिले, ये सुख मिले। वेद शास्त्र कहता है कि किसी एक कन्या से पाणी ग्रहण करके और उसी के साथ संतुष्ट रहना चाहिए, वह सुख कुछ सुख है वास्तव में, लेकिन जो तृष्णा जिसके मन में बसी हुई है, ये स्त्री चाहिए, वो स्त्री चाहिए, वो स्त्री चाहिए, ऐसे ही मर जाएगा, फिर शरीर छूटेगा, दूसरे शरीर में जाएगा, तो वहां भी वही गति, और कदाचित फिर वो पुरुष स्त्री बन गया तो उसको ये पुरुष, ये पुरुष, ये पुरुष चाहिए, यही लगा हुआ है जीव का। जो व्यक्ति एक स्त्री से संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसे संसार की समस्त स्त्रियां दे दी है फिर भी वो सुखी नहीं होगा, उसका हाय हाय लगा रहेगा। हमारा जजाति बहुत सुंदर उपदेश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि विषय भोगों के भोग से, कंज्यूम करने से कभी भी मन की शांति नहीं होगी, मन तरसता रहेगा और के लिए। जत पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुह्यंति मन प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। जो पुरुष काम से हत है, अभिलाषा से, तृष्णा से हत है, उसके मन में और की अभिलाषा बसी हुई है, उसको संसार की समग्र स्त्रियां, समग्र भोज वस्तुएं, समग्र धन और समग्र सवारियां, पशु, ये सब उसके मन को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको सुख नहीं पहुंचा सकते। इसका अर्थ है कि वस्तुओं में सुख नहीं है, जब तक तृष्णा बनी हुई है दुख ही दुख है, दुख ही दुख है।